आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी काउंसिल ने सेहत बीमिया प्रीमियम्स के लिए बुजुर्ग का एक नया ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में डिवीजनों, जिलों और तहसीलों की नए सिरे से हदबंदी के लिए हदबंदी का एक कमीशन तश्कील दिया है। दिल्ली हुकूमत ने 1 जनवरी तक कौमी राजधानी में पटाखों की फरोख्त, इसको तैयार करने और इसे इस्तेमाल करने के अलावा जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से जर्मनी के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अमरीका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में इम्कान तलाश करने की खातिर भारत के साथ शराकतदारी करेगा। और हॉकी में चीन में मर्दों की एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने जापान को 1 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी काउंसिल ने वुजरा के 2 अहम ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया है। एक ग्रुप का ताल्लुक तिब्बी और जिंदगी बीमे के बारे में शरह को माकूल बनाने से मुतालिक है, जबकि दूसरे ग्रुप का ताल्लुक मुआवजे से मुतालिक महसूल के बारे में है। उन्होंने कहा कि नवंबर में जीएसटी काउंसिल की आइंदा मीटिंग में सेहत और जिंदगी बीमा से मुतालिक वुजरा का नया ग्रुप अक्टूबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। वुजरा का ग्रुप बुजुर्ग शहरियों, लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए मामलात से मुतालिक इंश्योरेंस पर तबादला ख्याल करेगा। कल नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग हुई थी, जिसमें काउंसिल ने कैंसर से मुतालिक दवाओं पर जीएसटी में कमी करने का फैसला किया है। अब इन दवाओं पर 12% के बजाय 5% की शरह से टैक्स लगेगा। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि तहकीक व तरक्की के लिए फराहम किया गया कोई भी फंड जीएसटी से मुस्तस्ना रखा जाएगा। यूनिवर्सिटियों के लिए तहकीक व तरक्की के फंड को मुस्तस्ना रखने पर भी इत्तेफाक राय से समझौता तय पाया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मरकजी और रियासती सरकारों के जरिए कायम यूनिवर्सिटियों में तहकीक के लिए दिए जाने वाले फंड्स को और उन शख्सियात को जिन्होंने इनकम टैक्स से इस्तस्ना हासिल किया है जीएसटी से मुस्तस्ना रखा गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में जिलों, डिवीजनों और तहसीलों की नए सिरे से हदबंदी के लिए हदबंदी से मुतालिक एक कमीशन तश्कील दिया है। हुकूमत ने कहा है कि अवाम की आसानी के लिए जिलों और डिवीजनों की सरहदों की हदबंदी को दोबारा तरतीब दिया जा रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
रियासती सरकार ने कल एक 3 रुकनी हदबंदी कमीशन तश्कील दिया है। रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। वजीरे आला डॉ मोहन यादव ने कहा कि शहरी इस कमीशन को अपनी राय मशवरे दे सकेंगे।
जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज्यादा है या कई विसंगति पूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगति पूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है।
मध्य प्रदेश जुग्राफियाई एतबार से मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत है। रियासत का रकबा बड़ा है, लेकिन जिलों और डिवीजनों की सरहदों की वजह से आवाम को मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए सरहदों को फिर से तरतीब दिया गया है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
वजीर दाखिला अमित शाह को इत्तफाक राय से सरकारी जबान से मुतालिक पार्लियामानी कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से दोबारा मुंतखब किया गया है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत इस मकसद के साथ आगे बढ़ रही है कि 2047 तक मुल्क में सभी सरकारी निजाम भारतीय जबानों में काम करें। उन्होंने कहा कि सरकारी जबान का महकमा एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जो तकनीकी बुनियाद पर 8वें शेड्यूल की सभी जबानों का अस्खुद तर्जुमा करेगा। नई हुकूमत तश्कील दिए जाने के बाद सरकारी जबान से मुतालिक पार्लियामानी कमेटी फिर से तश्कील देने के लिए नई दिल्ली में कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। जनाब शाह ने 2019 से 2024 तक कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से खिदमात अंजाम दी हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत के साइबर जराइम से मुतालिक राबता मरकज के पहले योम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगे। اس موقع پر جناب شاہ سائبر جرائم سے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کا آغاز کریں گے اور سائبر دھوکہ دہی سے نمٹنے کے مرکز کو ملک کو وقف کریں گے۔ جناب شاہ ویب پر مبنی طریقہ کار سمنوے کا بھی آغاز کریں گے جو سائبر جرائم سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے، اسے شیئر کرنے اور اس کا جائزہ لینے کی خاطر ایک پلیٹ فارم ہوگا اور یہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے تال میل کا ایک ذریعہ بھی ہوگا۔ وہ سائبر کمانڈوز پروگرام کا بھی افتتاح کریں گے جس کے تحت سائبر سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی پولیس انتظاموں میں تربیت یافتہ ماہرین کا ایک ونگ قائم کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مزید لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ پدم ایوارڈز کے لیے تخلیقی شخصیات کو نامزد کریں۔ نامزد کرنے کا آخری دن اس مہینے کی 15 تاریخ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ بہت سی نامزدگیاں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ گزشتہ ایک دہائی میں حکومت نے پدم ایوارڈز کے ساتھ بنیادی سطح کے بے شمار سرماؤں کی عزت افزائی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایوارڈ یافتگان کی زندگی کے سفر نے بے شمار لوگوں کو ترغیب دی ہے اور ان کی ہمت و استقامت ان کے نمایاں کام میں نمایاں طور پر قابل دید ہے۔ نظام کو مزید شفاف اور شمولیاتی بنانے کے جذبے کے ساتھ حکومت لوگوں کو مختلف پدم ایوارڈز کے لیے دوسرے لوگوں کو نامزد کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ نامزدگیاں STPS #awards.gov.in پر جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز آج نئی دلی میں تمباکو سے نجات دلانے والے کلینک کا آغاز کرے گا۔ اس پہل کا مقصد عوام کی صحت کو درپیش چیلنج سے نمٹنا ہے جو بھارت میں تمباکو استعمال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دلی ایمز کے ڈائریکٹر پروفیسر این سری نواس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تمباکو سے نجات دلانے والا کلینک تمباکو سے پاک ایمز کی پہل کے حصے کے طور پر ایک صحت مند ماحول تیار کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ الگ تھلگ رکھے گئے ایک مریض کے ایم پاکس کلیڈ 2 سے متاثر ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اور یہ بھی تصدیق ہوئی ہے کہ سفر کے دوران وہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ ایک نوجوان شخص جو حال ہی میں کسی ملک کا سفر کر کے آیا ہے وہ ایم پاکس سے متاثر پایا گیا ہے اور اسے اس وقت تک الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح کا ہے جو 30 معاملے جولائی 2022 سے بھارت میں اس سے پہلے سامنے آئے تھے اور یہ وہ معاملہ نہیں ہے جسے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے صحت عامہ کے لیے ایمرجنسی قرار دیا گیا تھا جس کا تعلق ایم پاکس کلیڈ 1 سے ہے۔ کانگریس پارٹی کی مرکزی انتخابی کمیٹی CEC نے جموں کشمیر میں تیسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے 19 امیدواروں کی ایک اور فہرست جاری کی ہے۔ ہمارے جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ انتخاب لڑنے والے امیدواروں میں 6 سابق وزراء شامل ہیں۔ ان میں ڈاکٹر منوہر لال شرما کو بلاور اسمبلی حلقے سے، چودھری لال سنگھ کو بسولی اسمبلی حلقے سے، رمن بھلا کو RS پورہ جنوب سے، یوگیش سانے کو جموں مشرق سے، یشپال کندل اور مولا رام کو مہاراج اسمبلی حلقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ دلی سرکار نے قومی راجدھانی میں آلودگی کو کنٹرول کرنے کی خاطر پٹاخوں کی تیاری، انہیں ذخیرہ کرنے اور انہیں فروخت کرنے پر مکمل پابندی نافذ کر دی ہے۔ یہ پابندی آئندہ برس 1 جنوری تک جاری رہے گی۔ اس عرصے کے دوران پٹاخوں کو آن لائن بیچنے اور ان کی ڈیلیوری پر بھی پابندی رہے گی۔ دلی کے ماحولیات کے وزیر گوپال رائے نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ موسم سرما کے دوران شہر میں فضائی آلودگی بڑھنے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلی پولیس، دلی میں آلودگی پر کنٹرول سے متعلق کمیٹی اور محصولات کے محکمے کے ساتھ اشتراک میں اس پابندی پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے جرمنی کا 3 روزہ دورہ شروع کریں گے۔ برلن کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر ایس جے شنکر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے کے مقصد سے جرمنی کے وزیر خارجہ اور دیگر اہم لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اشتراک کے لیے مزید تعاون کا پتہ لگائیں گے۔ وزیر خارجہ کے اس دورے سے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز کے اگلے ماہ بھارت کے مجوزہ دورے کی راہ ہموار ہوگی۔ جرمنی بھارت کا اہم تجارتی شراکت دار ہے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا ایک سرکردہ وسیلہ ہے۔ इससे कबल कल डॉक्टर जयशंकर ने फिलिस्तीन के उमूर पर भारत की उसूली और वाज़े मौकिफ को दोहराया और खित्ते में जल्द से जल्द जंगबंदी की अपील की थी। उन्होंने कहा कि गजा की मौजूदा सूरत हाल भारत के लिए सबसे ज्यादा तशवीश का मामला है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम दहशतगर्दी और यरगमाल बनाकर रखने की कार्रवाईयों की मजम्मत करते हैं। हमें पहले ही मासूम शहरियों की लगातार हलाकतों पर शदीद अफसोस हुआ है। वजीर खारजा ने कल रियाज में कलीदी मुजाकरात के लिए भारत जीसीसी मुश्तरका वजारत की इफ्तिताही मीटिंग की मुश्तरका सदारत की थी। वजीर खारजा ने खलीजी तआवुन काउंसिल से अपील की कि वो एक दूसरे के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करें और एक दूसरे की खुशहाली में अपना तआवुन का सिलसिला जारी रखें।
Our deeper collaboration will help in stabilizing markets, driving innovation, and enhancing energy security. Our partnership in the areas of renewables, technology and innovation, health, space, education can also help realize our respective national goals.
अमरीका 2022 के चिप्स एक्ट के जरिए कायम किए गए बैन अल-अक़वामी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इख्तिरा फंड के तहत भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में शराकतदारी करेगा, जिसका मकसद उन इम्कानात को तलाश करना है जिनके तहत आलमी सेमीकंडक्टर इको निजाम को फरोग और वसत हासिल हो सके। अमरीकी महकमे खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस शराकतदारी से और ज्यादा लचकदार, महफूज और पायदार आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन कायम करने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर भारत अमरीका कलीदी शराकतदारी फोरम ने एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें अमरीका के नायब वजीर खारजा कुर्ट कैम्बेल ये कह रहे हैं कि भारत के साथ अमरीका की शराकतदारी को वसत देना बाइडन इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों में सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि इन कोशिशों से दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे रिश्तों को मुस्तहकम करने और उन अहम चैलेंजों से निपटने में मदद मिलेगी जिनका उन्हें सामना है। नेपाल बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद आईएसए में एक मुकम्मल रुकन की हैसियत से शामिल होने वाला 101वां मुल्क बन गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारजी उमूर की वजारत ने बताया कि नेपाल ने कल नई दिल्ली में आईएसए को तौसीख से मुतालिक दस्तावेजात सौंपे। हॉकी में चीन के होलनबर्ग के मकाम पर मर्दों के एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने दूसरे मैच में कल जापान के खिलाफ 1-5 से जीत हासिल की। भारतीय टीम ने मैच के दौरान इंतहाई उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सुखजीत सिंह ने चीन पर पहला गोल किया। मैच के दौरान भारत पूरी तरह हावी रहा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद के दरमियान दोतरफा बातचीत होने की खबर को पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, मिलाप, प्रताप और हिन्दुस्तान एक्सप्रेस समेत तकरीबन सभी अखबारों ने भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान 5 मुफाहमत नामों पर दस्तखत होने की खबर को सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि दोनों मुल्कों ने जौहरी तवानाई, अहम मादनियात, ग्रीन हाइड्रोजन, मस्नूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाने से इत्तफाक किया। भारत अमरीका की मुश्तरका फौजी मशकें युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां एडिशन राजस्थान में शुरू होने की खबर को रोजनामा प्रताप और हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने पहले सफे पर पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है कि वजारत दिफा ने दिफाई शोबे में खुद किफालत को फरोग देने के लिए भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 26,000 करोड़ रूपये की मालियत के एक मुआहदे पर दस्तखत किये।
खास खबरें एक बार फिर। अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी काउंसिल ने सेहत बीमा प्रीमियम्स के लिए बुजुर्ग का एक नया ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में डिवीजनों, जिलों और तहसीलों की नए सिरे से हदबंदी के लिए हदबंदी का एक कमीशन तश्कील दिया है। दिल्ली हुकूमत ने 1 जनवरी तक कौमी राजधानी में पटाखों की फरोख्त, इसको तैयार करने और इसे इस्तेमाल करने के अलावा जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से जर्मनी के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अमरीका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में इम्कानात तलाश करने की खातिर भारत के साथ शराकतदारी करेगा और हॉकी में चीन में मर्दों की एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने जापान को 1-5 से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।